प्रेमपुरी जी अध्यात्म भवन में अनवरत रूप से चल रहे सत्संग गंगा प्रवाह में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार हो रहा है। तृतीय मंत्र पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, पुनः इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें, फिर अर्थ का विचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। असुर्यानामते लोका असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृता अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ते तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ते एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः। अज्ञान अंधकार से आवृत वो असुर लोक हैं, और जो कोई आत्मघाती लोग होते हैं मरने के पश्चात उन्हीं लोकों को प्राप्त करते हैं। मंत्र समझने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है, और इस चीज को हम विगत सभाओं में देख रहे थे कि असुर किसको कहा गया है। आचार्य शंकर ने भाष्य के प्रारंभ में ही बड़ी सुंदर बात लिखी है, परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षे देवादयोपि असुरः। असुर कोई जाति विशेष नहीं होती है। कहते हैं कि परमात्मा अद्वय भावम अपेक्ष, एकमात्र अद्वैत परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा भाव की प्राप्ति न हुई और देवादि योनि में उसका जन्म हो गया है तो भी समझना चाहिए कि वो असुर ही है। असल में सुर तो उसी का नाम है जो परमात्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला हो। यदि परमात्मा का अद्वय भाव से अनुभव नहीं हुआ तो देवादयपि असुरः करके कहा, देवता भी असुर ही कहलाते हैं। क्यों असुर कहलाते हैं? इसीलिए कि तमसा अंधेन तमसा आवृताः, अज्ञान अंधकार से आवृत हैं, और वही अज्ञान अंधकार से आवृत होने के कारण आत्मघाती लोग हैं। इस प्रकार के जो भी आत्मघाती होते हैं फिर उन्हीं के लोगों को प्राप्त होंगे, इसका अर्थ हुआ कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। प्रथम मंत्र में जो श्रुति ने कहा था ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जितना भी नाम रूपात्मक जगत है परमात्मा दृष्टि से सबको आच्छादित कर दो। जिस नाम और रूप में दृष्टि अटकी हुई है उसका मिथ्या निश्चय करके और सर्वत्र उसकी जो अधिष्ठान भूत आत्मा है नाम रूप जगत की, जिसके बिना इस द्वैत प्रतीयमान जगत की सिद्धि ही संभव नहीं है। वेदांत वालों का अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण, जिसके बिना वेदांत का प्रवचन ही सफल नहीं होता है। जैसे कोई पिक्चर होती है और उस पिक्चर का कोई हीरो हीरोइन ना हो तो पिक्चर का महत्व ही क्या होगा। और वेदांत का यह प्रसिद्ध उदाहरण है, रज्जु सर्प का उदाहरण है। यदि प्रवचन में रज्जु और सर्प ना आए तो फिर वेदांत कैसा, और प्रेमपुरी में गिरीश भाई जब तक ना आए तो सभा कैसी, देखो पहुंच गए। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से प्रतीयमान होने वाला सर्प है वो रज्जु में ही है, हम रज्जु को रज्जु न समझ करके उसको सर्प समझ लिया। और ये भी जरूरी नहीं कि सभी को उस रस्सी में सर्प ही दिखाई पड़े, किसी को वहां डंडे की कल्पना भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी कोई पड़ी हुई लकड़ी की कल्पना बन सकती है, तो किसी को ऐसा हो सकता है कि शायद जमीन फटी हुई है, दरार पड़ी हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पानी गिर गया, पेट्रोल डीजल गिर गया है और वो काला काला दिखाई पड़ रहा है। किसी को सर्प प्रतीत होता है, किसी को दंड प्रतीत होता है, किसी को भू दरार प्रतीत होती है, तो किसी को पानी का, पेट्रोल का, डीजल का रेला मालूम पड़ता है। ये सब के सब जानते हैं कि प्रतीयमान है। यदि वहां पर रज्जु माने रस्सी न होती तो क्या ये चारों ही मालूम पड़ते, दिखाई पड़ते? अधिष्ठान में ही अध्यस्त टिका हुआ होता है और बिना किसी के हुए कोई भ्रम हो नहीं सकता। इसलिए प्रथम मंत्र में आया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जितना भी नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है इसका रस्सी के समान अधिष्ठान भूत कोई ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है, और उसमें प्रतीयमान सर्प आदि की तरह ये सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। अब ये करो कि जो दिख रहा है समझो, विचार करो, विवेक करो, क्या जैसा दिख रहा है ये वैसा ही है, जैसा हमारी आंख बता रही है और हमने मान लिया, क्या दुनिया वैसी ही है? जरा इसको अच्छी प्रकार से तो देखो, ये लगे कि ये सर्प कौन सा सर्प है, काला सर्प है, कोबरा सर्प है, विषैला है कि बिना विष वाला सर्प है, जरा अच्छी तरह से इसको देख तो ले। और उसको देख समझने के लिए किसी ने टॉर्च जला डाली, जेब में से मोबाइल निकाला, मोबाइल में से जो टॉर्च चालू किया, प्रकाश डाला, तो कौन सा सर्प निकलेगा, वो काला सर्प होगा, विषैला सर्प होगा कि बिना विष वाला होगा? वो प्रकाश करते ही समझ में आएगी कि सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी पड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक को ये सारा संसार जो अपने आंखों से दिखाई पड़ रहा है, जिसको हमने अपने मन से पकड़ करके रखा है, एक बार इसे संसार को पहचानने की कोशिश तो करो, ये क्या है ये संसार, कैसा है संसार। और जब इस संसार को खोजने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो कुछ का कुछ ही मिलेगा। इसलिए श्रुति ने कहा है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात। एक परमात्मा के जिज्ञासु को चाहिए दुनिया को परीक्षण करके देखें, भांति भांति से समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया का स्वरूप क्या है।
परीक्षे लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो। ये सारा का सारा संसार जो कर्म चित है, कर्म से ही इसका चयन हुआ है, ये कर्म फल भोग के लिए ही जीव को प्राप्त हुआ है। इसकी परीक्षा करके जब देख लेंगे तो निर्वेद मायात अपने आप संसार से वैराग्य होने लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज सुनते हैं समझते हैं, परंतु फिर भी आसक्ति नहीं जाती, पकड़ नहीं जाती, राग निवृत्ति नहीं होती है। सुनते हैं फिर भी वही स्थिति बन रही है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं और राग नहीं जा रहा। मानी इस मिथ्या जगत के प्रति जो हमारी आस्था बैठी हुई है, सत्यता की भावना बैठी हुई है और ऐसी दृढ़ भावना बनी है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, इसके बिना मैं नहीं हो सकता, इसके वियोग में मैं रह नहीं सकता, इसमें ममता नहीं, अभिस्वंग कर लेते हैं, आत्मबुद्धि कर लेते हैं, मैं हूं। इसलिए किसी का धन लूट जाने पर कहते हैं क्या रहा, मैं तो लूट गया हूं। कोई प्रियजन का वियोग होने पर कहता है अब जीने का कोई अर्थ नहीं, मैं तो मरा हुआ ही समझो, अब क्या है। किसी के मरने पर अपना मरना मान लेता है और किसी के लूटने पर अपना लूटना मान लेता है। ये सुनते हुए भी इतनी आसक्ति बनी रहती है। वस्तुतः सत्संग उसी के लिए होता है, चिंतन करने के लिए। जब तक निर्वेद वैराग्य प्राप्त न हो तब तक समझना कि अभी हमारे विवेक में, हमारे विचार में, इस संसार को समझने में कोई खामी है, कोई कमी है। वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? 10 रोज का कोई भूखा व्यक्ति है, कितनी भूख लगी होंगी उसको, खाने के लिए उसके सामने कोई बढ़िया भोजन आया 10 दिन के बाद में, गर्मा गर्म कई तरह की वैरायटी, सजा हुआ भोजन थाल में आ गया, प्रसन्नता होगी कि 10 दिन के बाद भोजन मिला तो कायदे से आया है सामने, तृप्त होकर के भोजन करूंगा, और हाथ में जदलियां आचमन करने की तैयारी कर रहा हो, रसोईया महाराज दौड़ा दौड़ा आए और कहने लगा ठहरो ठहरो ठहरो, आपने अभी खाया तो नहीं है? अरे नहीं, अभी तो आचमन कर रहा हूं, अभी तो पंचग्रास करूंगा, प्राणाहुति दूंगा फिर खाऊंगा। नहीं नहीं, खाना मत खाना मत। क्या हो गया? वो जो पानी काम में लिया गया है भोजन में, जिससे भात बना, जिससे सब्जी बनी, जिससे आटा गूंदा गया, वो बर्तन में देखा कि पानी के अंदर मरी हुई चिपकली पड़ी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। पानी सारा का सारा विषैला है। जब उस भोजन करने वाले व्यक्ति को यह पता चल गया कि भोजन विषैला है, बेचारा 10 दिन का भूखा है, बिना खाए उसकी भूख भागेगी कि नहीं? अब उसको कहें जोर से भूख लगी है तो 1-2 ग्रास खा लो, ज्यादा मत खाना, तैयार होगा? 1 ग्रास मुंह में नहीं डालेगा, क्योंकि उस भोजन में जो कमी है, उसमें जो दोष है, उसके प्रति उसकी दृष्टि चली गई है। ये नाम रूपात्मक जो मिथ्या जगत है, जहां चिपके हुए हैं, जब तक इसके वियोग की, इसके नश्वरता की, या यूं समझो कि मिथ्यात्व की बुद्धि दृढ़ नहीं हो जाएगी, वैराग्य भी आने वाला नहीं है। पहले मंत्र में यही बात कही गई है। तो जिसको विवेक और वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है, संसार के प्रति रचा पचा हुआ व्यक्ति है, उनकी क्या दशा होगी, उसी को बताने के लिए हमारा तीसरा मंत्र चल रहा है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा भृता। इतना अविवेक है, इतना अविवेक है, वहां विवेक दृष्टि खुलती ही नहीं है। देवताओं को भी इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, वो भी आत्म तत्व की दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से अगर विचार करके देखो तो असुर ही है। क्योंकि असुर की परिभाषा आप लोगों ने श्रवण की थी, असुर उसी को बताया गया है जो विषयों में रमण करने वाला है। असुर माने इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, उन्हें विषयों में ही रमण कर रहा। देवता भोग प्रधान प्राणी है, उनको भी वैराग्य का अवसर बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। इसलिए तो ब्रह्मा जी महाराज के पास में देवता भी गए, दानव भी गए, मानव भी गए। ब्रह्मा जी महाराज ने जरा कुछ घोषणा किया था तो जानने के लिए तीनों के तीनों गए हैं, देवता, दानव और मानव। कहा कि हमको कुछ उपदेश करिए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा जी महाराज के पास में जब देवता गए तो उनको उपदेश दिया, द द द। वो देवता संतुष्ट होकर के चले गए। फिर दानव गए, हमें भी कुछ उपदेश करिए। प्रजापति कहने लगे, द द द, वही उपदेश दे दिया। वो भी संतुष्ट होकर के गए। मनुष्य गए, मानव गया, उन्होंने कहा हमारे लिए कोई उपदेश करिए। ब्रह्मा जी का एक ही उपदेश है, द द द। वो भी संतुष्ट होकर के जाने लगा। ब्रह्मा जी ने गए हुओं को भी वापस बुलवाया, क्योंकि साल भर शिक्षक पढ़ाता है तो अंत में बच्चों की परीक्षा लेता है, पास होते हैं कि नहीं। शिष्यों को तीनों को ही बुलाया, देवताओं को, दानव को, मानव को। कहा मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है तुम समझे? देवता कहने लगे, हां समझ गए। बोले क्या समझे? आपने हमें दया का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, दया का तुमने क्या अर्थ किया? देवता कहने लगे कि हम लोग विषयों के प्रति, भोगों के प्रति लोलुप रहते हैं, रात और दिन विषयों में ही लिपटे हुए रहते हैं। जिसका संकल्प करते हैं वही भोग सामने आ जाता है। इसलिए आपने हमें उपदेश दिया है कि भोग के द्वारा कभी तुम तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे, कितना ही भोग लो। इसलिए जीवन किसके लिए है? अरे इंद्रियों का दमन करो, दया माने दमन, दमन करना चाहिए। ये उपदेश दिया आपने, अभ्यास करेंगे हम लोग अब इंद्रियों का दमन करने का। ब्रह्मा जी कहने लगे, बिल्कुल तुमने ठीक अर्थ किया है, अच्छा समझा है। दानवों से कहने लगे, तुम क्या समझे? वो जवाब देने लगे कि आपने उपदेश दिया, दया, दया का अर्थ है दया। क्योंकि हम इतने स्वार्थ परायण लोग होते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर दया नहीं कर पाते। अन्य का अनिष्ट करके भी हम अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगे रहते हैं। इसलिए आपने हमें उपदेश दिया है कि दया करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार दूसरों के साथ में ना करो। आपने धर्म का बहुत बड़ा उपदेश दिया है, इसलिए दया करने का आदेश दिया है। मनुष्य को ब्रह्मा जी पूछने लगे, अच्छी बात तुमने तो ठीक समझा दानव, पर हे मानव तुमने क्या समझा है? मानव कहने लगा, आपने हमें उपदेश दिया है द, और द का अर्थ है दान है, द का अर्थ दान। इसलिए आपने कहा, चूंकि हम मनुष्य इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो गए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, अपने सिद्धि के लिए न अपने शरीर के साथ भी हम अन्याय कर डालते हैं। कितने लोग होते हैं जो केवल कमाए 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 शरीर का भी ख्याल नहीं रखते। जीवन किसके लिए मिला ये विचार भी जिसके भीतर में नहीं आता। संग्रह 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 में लगे रहते हैं। इसलिए आपने उपदेश दिया है हमें, दान देने का उपदेश दिया है। अरे तुम्हें मिला है तो देने के लिए, सेवा के लिए मनुष्य जीवन का महत्व होता है। दया, दमन और दान, देवता, दानव, मानव तीनों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो इसलिए बनाया कि तत्व ज्ञान प्राप्त करें, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करें, मोक्ष सिद्धि करें। परंतु जो लोग ये आसुरी भाव को प्राप्त है, आप देख लीजिए, इस दृष्टि से चाहे देवता हो, चाहे दानव हो और चाहे मानव हो, वह असुर कोटि में ही आएंगे। असुर शब्द की व्याख्या करते हुए उपनिषद के अनुसार आपको निवेदन किया था, अददानम अश्रद्धानम अयजमानम आहुति रते असुरा। अददानम मनुष्य दान नहीं करता है, असुर है। अश्रद्धानम अरे दूसरे पर श्रद्धा नहीं करने वाला, उसका भी अनिष्ट करने को तैयार है, वो असुर भी उसी कोटि में है। ये दानव भी और जो देवता हैं, क्योंकि वो इंद्रिय दमन नहीं कर रहा है, वो भोग में ही लगा है, अयजमानम शास्त्र विधि से कर्म करने वाला नहीं है, न यज्ञ कर रहा है, न सत्संग कर रहा है और न दान कर रहा है, केवल भोग में लगा हुआ है, भोग प्रधान है, वो देवता भी असुर के अंतर्गत ही आएंगे। इस प्रकार चाहे किसी भी श्रेणी में, किसी भी स्तर में हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो और चाहे मानव हो, यदि उसका उद्देश्य भोग प्रधानता का है तो वह अज्ञान अंधकार से आवृत लोक है, उन्हीं लोगों को प्राप्त करेंगे। अज्ञान अंधकार से आवृत का अर्थ ऐसा मत समझना कि आंख बंद करते ही हमारे सामने अंधकार हो गया, ऐसा कोई लोक होगा जहां अंधकार ही अंधकार है। अरे खुली आंख में भी अंधकार है, सामने आंख देख रही है प्रकाश जैसा लग रहा है, पर प्रकाश में भी जिसको नहीं देख पा रहे हैं, उस तत्व के कोई परखने, उसको जानने, उसको समझने की दृष्टि है ही नहीं। मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? माला दिख रही है। अब क्या दिख रहा है मेरे हाथ में आपको? नेपकिन दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? हाथ दिख रहा है। और हाथ में कुछ है? पांच अंगुली दिख रही है। और कुछ दिख रहा है आगे पीछे? माला दिख गई, नेपकिन दिख गया, अंगुलियां दिख गई, और कुछ दिखा? हाथ दिख रहा है और कुछ? प्रकाश दिख रहा है। सब दिख रहे हैं। सबसे पहले माला दिखी, नेपकिन दिखा, अंगुलियां दिखी, हाथ दिखा या प्रकाश दिखा? प्रकाश सबसे पहले दिख रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। पहले प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाश में ही सब कुछ मालूम पड़ रहा है, सब प्रकाशित हो रहे हैं। पहला ज्ञान प्रकाश का हो रहा है, लेकिन जिस प्रकाश को सबसे पहले देख रहे हैं, आप देख लीजिए लास्ट में आपको प्रकाश पर दृष्टि गई है। माला दिखी, नेपकिन दिखा, हाथ दिखा, अंगुलियां दिखी, जब कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आए, तो अंत में कहा प्रकाश में दिख रहा है। लेकिन ये प्रकाश सबसे पहले दिखने लग जाए, जिसको दिखते हुए भी नहीं देख रहे, यही तो अज्ञान अंधकार है। तो जैसे प्रकाश में सब कुछ दिखते हुए भी प्रकाश को नहीं देख पा रहे, ऐसे चैतन्य आत्मा जो प्रकाश है उसको नहीं देखते हुए उसके प्रकाश में अन्य को देख रहे हैं, भेद को देख रहे हैं। इस दृष्टि से जो अन्य दिखाई पड़ रहा है उसी को सत्य मान लिया है, जबकि सबका परम सत्य है जिससे दिखाई पड़ रहा है। वो जो परमात्मा तत्व है उसको न जानने के कारण ही कहा अंधे न तमसावृता, अज्ञान अंधकार से जो आवृत है, तांस्ते प्रेत्याभिगत संति एक आत्मजनोहना, ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति, वो असुर संबंधी जो लोक हैं उन लोकों में कौन जाएगा? बोले ते गच्छन्ति, वो जाएंगे, वो लोग जाएंगे एक ये चात्म हनोजनाहा, कोई आत्मघाती होंगे वो जाएंगे। आत्मघात करने वाले लोग वहां जा रहे हैं जहां पर अज्ञान अंधकार ही अंधकार है। इसलिए कहां पर है अज्ञान अंधकार? जहां पर भय का ज्ञान नहीं होता है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं, परम सत्ता का, परम प्रकाश का ज्ञान नहीं है, उस लोक में वही लोग जाएंगे जो आत्मघाती होते हैं। आत्मघात कहां किया जा रहा है? यह आत्मघात कौन से शरीर में होता है? देवादि योनि में होता है, दानव योनि में होता है कि मानव योनि में होता है? आत्मघात कहां होता है? आत्मरक्षा और आत्मघात दोनों का दोनों होगा तो मनुष्य शरीर में ही होगा। रक्षा भी कर पाएंगे मनुष्य शरीर में ही कर पाएंगे, और आत्मघात हो रहा है तो भी मनुष्य शरीर ही में हो रहा है, क्योंकि यहीं की जो धारणा है, यहीं की मान्यता है, उसी को लेकर के अन्य अन्य स्थानों में गति होती है। योनि मन्य प्रबध्यन्ते शरीरत्वाय देहिन स्थानमन्यनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। भाष्यकार ने इसको उद्धृत किया है। अन्यत्र तो यथा कर्म यथा श्रुत उसकी गति हो रही है। आत्मरक्षा करोगे तो मनुष्य शरीर में ही कर पाएंगे। जिसने कर लिया उसका जीवन सार्थक है, उसका जीवन सफल है। श्रुति कहती यह चेद अवेदित सत्यमस्ति। यदि इस मनुष्य जीवन में आपने अपने स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, आपने अपने रक्षा कर लिए, अपनों को पालन कर लिया, आत्मानम पा लिया था जो कहा, तो सत्यमस्ति, बिल्कुल जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। न चेद अवेदिन महति विनष्टि। और यदि इस जीवन में अपने को न जाना, यही आत्मघात है, तो महति विनष्टि होगी, बड़ी भारी हानि हो जाएगी। बोले अपने आप को न जानना आत्मघात कैसे होगा? वो इसलिए होगा कि जो मैं हूं उसको वैसा न जान करके ठीक उसको बिल्कुल विपरीत समझ लिया, दूसरा समझ लिया। एक महापुरुष की घटना मुझे याद आई, आत्मघात कैसे होता बताएं थे आपको। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, खूब दर्शन किए, सत्संग भी किया होगा, श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी महामंडलेश्वर काशिकानंद जी महाराज, सब लोग जानते रहे। हमारे भारत के एक अद्वितीय अद्भुत महाविद्वान थे दर्शनों के, संपूर्ण संप्रदाय वालों ने निर्विघ्न रूप, ये निर्विवाद रूप से संपूर्ण दर्शनों के प्रथम विद्वान के रूप में उनको माना था। बड़े भारी विद्वान रहे। मैंने सुना उनके जीवन की घटना, एक बार कहीं दक्षिण भारत में कोई सभा थी, बड़ा आयोजन था, उन्हें आमंत्रित किया गया, बड़ा नाम था महाराज जी का, तो उनके स्वागत के लिए कोई एयरपोर्ट से लेकर के गए जहां सभा होनी थी। बहुत सारे लोग लेने के लिए आए, कई सारी गाड़ियां आगे पीछे चलती रहीं। महाराज जी थे और उनके साथ में उनका सेवक था, एक मेरे नाम राशि एक महात्मा थे, जगदीश्वर आनंद, अब है कि नहीं पता नहीं, आनंदवन आश्रम में रहते थे महाराज जी के यहां। देखने में जो उसकी वो पर्सनलिटी, क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ वो इतनी अच्छी थी, बिल्कुल लंबा चौड़ा शरीर, गौर वर्ण, एकदम सफेद दाढ़ी, और फिर मोटी मोटी मणकों की माला पहन करके बाबा जी पूरा तैयार, त्रिपुंड धारण करके लगे, ओहो आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य आ गए हो। इतना सुंदर शरीर था महात्मा का, और उम्र दोनों की लगभग समान सी थी, महाराज जी की और उनके शरीर की। वो आसनधारी महाराज जी के साथ में गए आसन उठाने के लिए, पर महाराज जी को तो आपने देखा, वो बिल्कुल सिंपल रहते थे। जब वहां गए और गाड़ी से, महाराज जी को गाड़ी में आगे बैठने का शौक था, पसंद आगे बैठना ही करते थे, और सेवक पीछे वाली सीट पर बैठता था, और आप जैसे लोग जानते हैं बड़े लोग कहां बैठते हैं, पीछे वाली सीट पर, आगे क्यों नहीं बैठते, खुदा ने कास्ता कहीं टक्कर हो गई तो मरे तो ड्राइवर मरे, आगे वाला मरे, पीछे वाले तो सेफ रह जाए, आराम से बैठेंगे। बड़े लोग पीछे बैठते हैं, सेवक आगे बैठता है। महाराज जी को था वो हमेशा अगली सीट पर बैठा करते थे। जो ही गाड़ी खड़ी हुई और पीछे वाली फाटक दौड़ करके लोगों ने खोली कि महाराज जी पीछे की फाटक में बैठे होंगे, सीट पर फाटक खोली तो सेवक आसनधारी जगदीश्वरानंद उठे, बाहर निकले, देखने में लगे साक्षात शायद यही काशिकानंद जी महाराज है। वो जितने फूल हार लेकर के लोग खड़े थे, धड़ाधड़ महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, वाह क्या स्वागत होने लगा। अगली वाली फाटक कौन खोले बाबा? काशिकानंद जी महाराज को स्वयं को खोल करके बाहर निकलना पड़ा और खड़े खड़े देखते रहे, चेले का स्वागत बहुत अच्छा हो रहा है। कई सारे लोगों को ये बात तब जाकर के समझ में आई जब सभा में चले गए और मंच पर महाराज जी का प्रवचन होने लगा, सेवक जी की तरफ बैठे बैठे देख रहे, तब लोगों को गलानी हुई, हमने क्या कर दिया, हमने स्वागत किसका कर दिया। अब बताइए जिस समय शिष्य का स्वागत हो रहा था, वो जो महाराज जी का जो महत्व था, जो उसके लायक नहीं था उसको महत्व और जो लायक थे उसका महत्व नहीं समझा, तो महाराज जी की जो महिमा थी, विद्वत्ता थी, उनकी योग्यता थी, उसका हनन हुआ है कि नहीं? उसका तो हनन हो गया। जो वो नहीं है उनको वो समझ लिया और जो है उनको वो समझ लिया, एक स्वामी को सेवक समझ लिया और सेवक को स्वामी समझ लिया, कोई दोष नहीं है। सेवक को स्वामी समझ लो वो कोई बुरी बात नहीं है, आज का सेवक कल स्वामी हो जाएगा, लेकिन आज का स्वामी कल सेवक कैसे होगा? सेवक स्वामी तो बन जाएगा लेकिन स्वामी सेवक कैसे होगा? शिष्य गुरु तो बन जाएगा पर गुरु शिष्य कैसे होगा? अब जो उनमें गुरुत्व था, उनमें स्वामित्व था, उनके प्रति जो श्रेष्ठत्व था, उसका हनन हुआ है कि नहीं? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, श्रेष्ठ बुद्धि से मानो कोई बात नहीं, आपकी उपासना बन जाएगी, लेकिन श्रेष्ठ को कनिष्ठ मान लेना, बड़े को छोटा मान लेना, उसका हनन होगा कि नहीं? आप किसी बड़े ऑफिस में गए, ऑफिसर से मिलना है और ऑफिसर गेट के पास में खड़ा है, वो ड्राइवर गाड़ी लेकर के आने वाला था, कहीं जाना था, आप वहां गए, गेट के पास खड़े व्यक्ति को कहते हैं भैया साहब से मिलना है, यही है क्या? और साहब बोलते बोलो क्या काम है? अरे तुमसे क्या कहेंगे, साहब से मिलेंगे, उनसे बताएंगे। तुम हमारा यही इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, चलो हटो, है कि नहीं साहब बताओ ना। अब साहब कहते अरे बोलो तो सही क्या काम है, बोले तुमसे क्या बोलना है, जिनसे बात करनी उनसे करनी है। अब आपने क्या समझा उस अधिकारी को, समझ लिया कि एक गेट कीपर एक चौकीदार है। उस बड़े ऑफिसर के जो ऑफिसरत्व का हनन हुआ है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से बड़े को जब निम्न श्रेणी में देख लेते हैं, अब ये बताइए आत्मा का कितना बड़ा महत्व है। आत्मा अज है, आत्मा अविनाशी है, न जायते मरियते वा कदाचित, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं हुई, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें कभी जड़ता नहीं आई, निरंतर प्रकाशित कर रहा है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है, जो कभी भी पराश्रित नहीं हुआ, वो स्वतः सिद्ध तत्व है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वतः सिद्ध तत्व है, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, बड़ी बड़ी शक्तियां जिसके प्रकाश में प्रकाशित हो रही है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनोभाति सर्वम, सूर्य चंद्रमा की जहां गति नहीं है, ये बाह्य जगत को प्रकाशित करने वाले उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु तो जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित कर रहे हैं, वो सूर्य और वो चंद्रमा, हमारी आंख में बैठ करके सूर्य सबको देख रहा है, लेकिन हमारी आंख में बैठ करके वो सूर्य उस स्वयं प्रकाश आत्मा को नहीं देख पा रहा है। हमारे मन में बैठ करके चंद्रमा पता नहीं कहां कहां का सफर करके आ जाता है, पर वो मन उस आत्मा को, उस परम प्रकाश को लक्षित नहीं कर पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग न मनो न विद्मो न विजानी वो, न चक्षु वहां पहुंच रहा है, न वाणी उसको बता पा रही है। बड़ा अद्भुत तत्व है, उसको जाना नहीं जो सबका परम प्रकाशक है, और उसको उल्टा मान लिया। ये किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, जो सबका परम प्रकाशक है, जो स्वतः सिद्ध तत्व है, वो मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं हूं, पर मैंने मेरे को अपने जैसा नहीं समझा जो मैं जैसा हूं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। सब को जो प्रकाशित कर रहा है वही सबका परम प्रकाशक मेरा आत्मा, मैं स्वयं हूं, मेरा स्वरूप वही तो मैं हूं। मेरे होने पर बुद्धि काम कर रही है, मेरे से मन अपना व्यवहार कर रहा, सारी इंद्रियां व्यवहार कर रही है, और वो मैं हूं अजन्मा अविनाशी, न जायते मरियते वा कदाचित जो कहा गया। उस आत्मा को अपने आप को ऐसा न समझ करके और अपने को जन्मने वाला समझ लिया, अपने को मरने वाला समझ लिया। जो परम प्रकाशक है, जिसका नित्य ज्ञान प्रकाश कभी लुप्त नहीं होता, नहीं दृष्टु दृष्टे विप्रिलोप विद्यते अविनाशित्वात्, अपने स्वरूप की जो नित्य ज्ञान दृष्टि है उसका कभी लोप नहीं होता, वो कभी सोता भी नहीं है। जब गहरी नींद आती है और गहरी नींद से उठ करके बोलते हैं कि आज मुझे कुछ पता नहीं रहा, आनंद आ गया, कुछ भी मालूम नहीं था, जो ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, आनंद आ गया, वो कहने वाला कौन है? बोले मैं, जिसको कुछ पता नहीं था, जिसको आनंद आ गया है। उस गहरी नींद में इस चीज का उसको भान था कि नहीं कि इस समय मुझे कुछ मालूम नहीं है, इस बात का उसको भान था कि नहीं, बड़ा आनंद है। प्रगाढ़ नींद में भी कुछ ज्ञान नहीं है, उसे अज्ञान को जान रहा है। प्रगाढ़ नींद में भी जो अद्वैत स्थिति की आनंदानुभूति है उसको ले रहा है। बताइए, जिसने उस आनंद को लिया है और कुछ ज्ञान नहीं है, उस अज्ञान को जिसने जाना है, वो सोया हुआ था कि जागा हुआ था? कल्पना करो, गहरी नींद में जिसने उस आनंद को जाना है और कुछ ज्ञान नहीं है, उस अज्ञान को भी जाना है, वो जानने वाला सो रहा था कि जाग रहा था? स्पष्ट है कि नहीं, दृष्टो दृष्टे विप्रिलोप विद्यते अविनाशित्वात्। जिस नित्य ज्ञान दृष्टि का कभी लोप होता ही नहीं है, अखंड प्रकाशक है, सबका परम प्रकाशक है, और वो मानता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं। बताइए, जो परम ज्ञान स्वरूप है, परम प्रकाशक है, उसने अपने में अज्ञान अंधकार को ओढ़ लिया, अज्ञान से उसको आवृत कर दिया, ढक दिया, अपने से आपको भूल जाना, इससे बड़ा हनन और क्या होगा? यही आत्मघात है। कथा तो सुनाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। जनक का प्रसिद्ध स्वप्न है, यह सत्य है कि वह सत्य है। स्वप्न में देख रहा है कि किसी जंगल में भटक रहा हूं, जोर से भूख और प्यास लगी है, भटकता भटकता किसी नगर में प्रवेश किया, सबका दाता राजा आज घर घर में भिखारी बनकर के घूम रहा है, सबको अन्न देने वाले को दो दाने खाने को नहीं मिल रहे हैं, कैसी विलक्षण स्थिति है। विपत्तियां पर विपत्तियां आई, स्वप्न आपको मालूम है। राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए, कहीं अन्न क्षेत्र में कुछ खिचड़ी मिली खाने को, वही स्वप्न में और खिचड़ी भी वो जली हुई चिपकी हुई बर्तन के नीचे के भाग से कुरेद करके निकाली हुई कैसे खाया जाए। कोई दही तो ऊपर से नहीं मिला, जाओ सामने प्याऊ में से पानी लेकर के डाल करके लिक्विड बना करके खा लेना। रोड क्रॉस करने लगते हैं, लड़ते हुए सांड आए, टक्कर लगी, वो जली हुई खिचड़ी भी कहां जाकर के गिरी और राजा ऐसे गिरे कि धूल दूषित हो गए। बड़ी मुश्किल से संभल के उठे, आंख खुलने लगी और जब आंख खुली तो देखा आहा हो, संपूर्ण राजकीय सुख सुविधाओं से सुसज्जित अपने रंग महल में सो रहे हैं। खड़ा हो गया प्रश्न, ये सत्य है कि वो सत्य है तो राजा, और राजा अपने को बिल्कुल भिखारी के रूप में देख रहा है। सारी सुविधाएं आनंद स्वरूप हैं, पर लग रहा है कि पेट में भूख लगी है, खाने को नहीं मिल रहा है। अब बताइए उसने जो अपना राजत्व तो था उसका अपने से आपने आनंद किया है कि नहीं। मैं राजा हूं इस बात की विस्मृति हुई और मैं भिखारी हूं उसको ऐसा मान लिया है। वो राजा अपने का हनन हो गया वहां पर। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा, तू सबका सरदार है फिर गुलाम कैसे हो रहा। ये तो सबका स्वामी है, सबका मालिक है, सबका प्रकाशक है और फिर भी गुलाम हो गया। ये 3.5 हाथ के शरीर में इसे बैठ करके शरीर को ही मैं मान लिया, शरीर को ही मेरा मान लिया। जो मैं हूं ऐसा ज्ञान का आवरण, ऐसा अंधकार छा गया उसके ऊपर, अपने आप का पता ही नहीं चल रहा है। जैसे वो भिखारी के रूप में राजा देख रहा है, हम शरीर के रूप में देख रहे हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, विद्वान हूं, पता नहीं किस किस को लेकर के सबका अपने में आरोप कर लेता है। सारे आरोप हटा करके देखें तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। पर जो आत्मा जैसा नहीं है उसको उस तरह का समझ लिया, और जो उसका मुक्त स्वरूप स्वभाव है उसको वैसा न जानना, यही आत्मा का हनन करना है। इसलिए जो लोग मनुष्य शरीर पाकर के भी जहां अपने से आपको जाना जा सकता है और वहां अपने से आपको नहीं जाना, वही है आत्मघाती लोग, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया। एक आत्महनो जना, जो कोई आत्मघाती लोग होते हैं वो कहां जाते हैं? अज्ञान अंधकार से आवृत जो लोक है उन्हीं लोकों में जाएंगे। कब जाएंगे? तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, उन लोगों को वो लोग प्रयाण करने के बाद जाते हैं। अज्ञान अंधकार में तो पड़े ही हैं, पर और अंधकार से अंधकार में, अंधकार से अंधकार में जाते रहेंगे। कम से कम यहां तो प्रकाश करके अपने स्वरूप को ज्ञान से देखने का चांस तो था, अवसर तो था, पर उन योनियों में चला जाएगा जो आचार्य शंकर कठश्रुति को याद करते हुए कहते हैं, योनि मन्य प्रपद्यन्ते श्रीरत्वाय देहिन स्थान मन्य अनुसंयंती यथा कर्म यथा श्रुतम। अब जीवन भर जैसा कर्म और संस्कार अर्जित किए हैं उसी के अनुसार अन्य अन्य योनियों में चला जाता है जहां कहीं पर भी आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिल पाता। ये जो उसके निंदा की गई है, ये निंदा के लिए नहीं है, ये सावधानी के लिए है कि हमें इस अज्ञान अंधकार कूप से बाहर निकलना है और आप आत्मस्वरूप में जागना है। भगवती श्रुति यही कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो मनुष्य उठो, जागो, अपने स्वरूप में आ जाओ, इस अज्ञान अंधकार से उठो और अपने स्वरूप में आ जाओ। बड़ी करुणा करके श्रुति बोल रही है। और ऐसे यदि आपको नहीं समझ में आती है, प्राप्य वरान निबोधत है, अपने स्वरूप में आने के लिए सत्संग करो, रोज श्रेष्ठों को प्राप्त करो, वर को प्राप्त करो। निबोधत है, अपना जो निजी स्वरूप है उस स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो, उसको जान लो, और नहीं तो फिर ये तैयार है असुरिया नाम ते लोक, जो असुर संबंधी लोक है। इसलिए श्रुति यहां पर बहुत सावधान करती है। ये अधम ज्ञान का यहां पर वर्णन हुआ, तामस ज्ञान का वर्णन हुआ, चूंकि वो अधम तामस ज्ञान त्याज्य है। अब आगे का जो प्रसंग हमारे सामने आएगा, प्रथम जो मंत्र आया था उसका विस्तार आने वाला है। ये समझ लो कि तीनों प्रकार का ज्ञान का वर्णन करने के बाद इस ईशावास्य उपनिषद में जो 15 मंत्र अवशेष रह गए हैं, 18 मंत्र हैं कुल, 3 मंत्र हुए और 15 मंत्र जो शेष हैं, उनमें चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम मंत्र, 5 मंत्र इस पहले मंत्र की ही व्याख्या है। इस समझ लो कि ये मंत्र हैं और आने वाले मंत्र ब्राह्मण हैं। मंत्र भाग की व्याख्या ब्राह्मण भाग करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस मंत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए कैसे सर्वत्र उस ब्रह्म का दर्शन करें, उसके लिए आने वाले जो 5 मंत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल से हम लोग आगे उनमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। घड़ी इनकार कर चुकी है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।